अभय कबीर को संभालने के लिए चला गया। वहीं अनामिका ने सोचा कि जब तक कबीर वहां ना आ जाए, क्यों ना तब तक बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स किया जाए और इन लवबर्ड्स को थोड़ा अकेला छोड़ दिया जाए। ये सोचकर देर न करते हुए अनामिका ने जैसे ही स्टेज से अपने कदम नीचे की ओर बढ़ाए, ठीक उसी वक्त अचानक रणविजय स्टेज पर जा पहुंचा था और सीधा अनामिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक से ये देखकर अनामिका खुद भी चौंक गई थी। वहीं सिद्धार्थ की नज़र जैसे ही रणविजय पर पड़ी तो वो भी चौंक गया। हालांकि तब तक उसकी गहरी नज़रें पूरी तरह से झलक और आदित्य पर ही टिकी हुई थी, लेकिन अब अनामिका और रणविजय को साथ देखकर इस वक्त सिद्धार्थ की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी रणविजय ने तुरंत आगे बढ़कर अनामिका की कमर पर कसकर अपने हाथ जमा लिए थे। अनामिका रणविजय को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। अगले ही पल उसने खुद को उससे छुड़ाया और जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर दे मारा। फिर तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आसपास भी भटकने की? अब वहीं आदित्य और झलक, जो कि एक दूसरे में खोए हुए थे, अनामिका की तेज आवाज सुनकर दोनों ही चौंक गए और फटाफट अनामिका के पास जाकर खड़े हो गए थे। वहीं झलक ने जैसे ही अपने सामने रणविजय को देखा तो वो भी थोड़ा सा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वो सीधा अनामिका के सामने जाकर खड़ी हो गई और रणविजय को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर खुराना, आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और ऐसा आपको कौन सा काम पड़ गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? रणविजय ने झलक को देखा और व्यंग्य भरी आवाज में बोला, अरे वाह, ओह तो मिस बिलियनर भी यहाँ मौजूद है और अपने इस नए आशिक के साथ घूम रही हो। मानना पड़ेगा काफी ऊंची छलांग लगाई है तुमने, एक ही पल में सब कुछ बदल कर रख दिया तुमने। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ की है पता है? तुमने खुराना परिवार से पंगा लिया है। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से खुराना परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम लोगों से दुश्मनी लेकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फिर वो अनामिका की तरफ देख कर बोला, और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब अनामिका से चाहिए। तभी झलक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और रणविजय को घूरते हुए बोली, मेरी बहन तुम जैसे घटिया लोगों से बात नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। जैसे ही झलक ने ये कहा, रणविजय अचानक जोरों से हंसने लगा और बोला, बहन, ओ वाओ। तुम ये बोलकर रणविजय हंसने लगा और अगले ही पल डार्क वॉइस में बोला, तुम मुझे ये सब तुम बोल रही हो? मेरे पास खून है, खानदान है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, दौलत है, तुम क्या हो? एक नाजायज औलाद, ऐसी लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं है, जो अनामिका के रहमो करम पर पल रही है। तुम्हें क्या लगा अगर अनामिका मुझसे तुम्हारी पहचान छिपाएगी तो क्या मैं कुछ पता नहीं लगाऊंगा? मैंने अच्छी तरह सब कुछ पता लगा लिया है। वो आगे बोला, तुमने किस तरीके से सब लोगों का इस्तेमाल किया ये भी मुझे पता है, लेकिन पता है झलक, तुमने भले ही मल्होत्रा परिवार को रो रोकर अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लिया हो, लेकिन इन सब बातों से तुम अपने नाम के आगे मल्होत्रा जोड़ लो तब भी सच नहीं बदलेगा, तुम रहोगी फिर भी एक नाजायज औलाद ही। जैसे ही रणविजय ने झलक की इस तरह बेइज्जती की, आदित्य का खून पूरी तरह से खौल चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने रणविजय का कॉलर पकड़ लिया, फिर उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, खबरदार, जो मेरी होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अब वही सिद्धार्थ के लिए वहां रुके रहना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। देर न करते हुए वो सीधा रणविजय के ठीक साथ जाकर खड़ा हो गया और आदित्य को घूरते हुए बोला, अपनी हद में रहिए मिस्टर राणा, कहीं ऐसा ना हो कि एक नाजायज लड़की के चक्कर में आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। जैसे ही अचानक सिद्धार्थ वहां आया, झलक थोड़ा सा हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नजरें आकांक्षा पर पड़ी तो वो थोड़ा सा चौंक गई। वहीं आकांक्षा अब सीधा झलक को घूर कर देखने लगी थी। उसके चेहरे पर मौजूद मक्कारी झलक को साफ दिखाई दे रही थी। तभी अनामिका झलक के कानों के पास जाकर धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है? अगर यहाँ इन लोगों में इस तरीके से झगड़ा शुरू हो गया तो हमें भी लेने के देने पड़ सकते हैं, और अगर तुम एक्शन मोड में आ गई तो तुम सिद्धार्थ, आकांक्षा और रणविजय तीनों की जान ले लोगी, फिर तुम्हारे बदले का मजा ही क्या आएगा? एक ही पल में अगर इन लोगों की कहानी खत्म हो गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी अपने शिकारों को खुला छोड़ दो, अभी उनकी जान मत लो। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, झलक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, वैसे मानना पड़ेगा काफी ज्यादा शातिर हो गई हो तुम। तो अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारी संगत का असर है, तुमसे ही सीखा है तो शातिर क्यों नहीं होंगे? फिलहाल झलक ने अपने चेहरे पर फिर से गुस्सा सजाया और तुरंत आदित्य को देखकर बोली, आदित्य जी प्लीज, आपको इन घटिया लोगों के मुंह लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो अपना समय हम ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए इन्हें, हम अपनी रात इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अब आकांक्षा भले ही सबके सामने चुपचाप खड़ी थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि झलक उसे फिर से सिद्धार्थ के साथ सबके सामने खड़ी खोटी सुनाए, इसलिए वो जानबूझकर चुप थी। लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली थी, झलक, सच में तुम इतनी घटिया निकलोगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो? और वैसे भी शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त सिद्धार्थ के क्लब में खड़ी हुई हो और यहाँ इस तरीके की बकवास कर रही हो। तभी झलक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आकांक्षा को देखा और बोली थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी याददाश्त पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और यहाँ पर पार्टी करने के पैसे लगते हैं, तो हम यहाँ पूरे पैसे भर कर आए हैं, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह सके। फिर वो आगे बोली, वैसे भी यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल साफ साफ है। पैसे भरने के बाद अगर कोई भी यहाँ के कस्टमर को पार्टी करने से रोकने की कोशिश करता है तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, सिद्धार्थ के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत ही झलक पर ताना मारते हुए बोला, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के पैसे बचाना चाहती हो, इसीलिए हमें गुस्सा दिलाकर यहाँ झगड़ा करवाना चाहती हो ताकि तुम्हारे छोटे मोटे शौक भी पूरे हो सके। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सिद्धार्थ के सामने ही झलक की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला था, मिस्टर सिद्धार्थ, मेरी होने वाली बीवी के क्या क्या शौक हैं, क्या क्या नहीं है और उसे किस चीज की जरूरत है, ये सब मैं देख लूंगा। मेरे ख्याल से आपको इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं सिद्धार्थ के सामने ही झलक के इतना करीब होने पर सिद्धार्थ ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं आकांक्षा तुरंत ही अब सिद्धार्थ के ठीक पास आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली थी, झलक, तुमने जो करना था वो कर लिया और मानना पड़ेगा, तुमने हमें बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया था। तुम काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन तुम जानती हो तुमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? वो तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, सबसे बड़ी गलती तुमसे ये हुई है कि तुमने सिद्धार्थ से पंगा लिया है। तुम्हारा ये दिखावा और ये सारा नाटक मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम आदित्य राणा के करीब होने का दिखावा कर रही हो ताकि तुम सिद्धार्थ को जलन महसूस करवा सको। फिर वो गर्व से बोली,
लेकिन मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि सिद्धार्थ और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, झलक ने एक गहरी नजरों से आदित्य को देखा और अगले ही पल सिद्धार्थ और आकांक्षा को देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। फिर वो बोली थी, मुझे इंतजार रहेगा आपकी शादी वाले दिन का, मिस ओबेरॉय। जैसे ही झलक ने ये कहा, आकांक्षा को बड़ा ही अजीब सा लगा। वो सोचने लगी कि आखिरकार झलक इतनी आसानी से इस बात को किस तरह स्वीकार कर रही है। लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ की नजरें तो पूरी तरह से आदित्य के उस हाथ पर टिकी हुई थी जो झलक की कमर पर रखा हुआ था, और झलक ने भी आदित्य को कसकर अपने करीब किया हुआ था। ये सब देखकर सिद्धार्थ के अंदर गुस्सा, जलन और बेचैनी का तूफान उठ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उसकी आंखों के सामने झलक का किसी और के साथ इस तरह करीब होना उसे भीतर तक चुभ रहा था। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।